सत्यवचन।
नमस्कार, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
यही समय है रब से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार मिले। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी आप प्रभु के वचन से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। उन नए श्रोताओं का मैं प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप भी आज के इस कार्यक्रम को सुनकर प्रभु के वचनों में से बहुत सारी बातों को सीखेंगे जो आपके लिए आत्मिक लाभ का कारण ठहरेगा। मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारे आपसे प्रार्थना है कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कुछ भी आज हम सीखते हैं निश्चित रूप से ये वचन उनके हृदयों में कार्य करने पाए। आप हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, इस अध्ययन में हम इसराइली लोगों के लिए आराधना करने के स्थान को निर्मित और सुसज्जित करना और याजकों और परमेश्वर की आराधना से संबंधित नियमों को प्राप्त करने के विषय में सीखेंगे। पिछले अध्ययन में हमने निवास स्थान के लिए शिल्पकार, सप्त के दिन अर्थात विश्रामवार का दिन जो व्यवस्था का एक चिन्ह था उसके विषय में सुना था, और इस अध्ययन में सोने के बछड़े का प्रसंग महत्वपूर्ण है और अवश्य ही आपको यह अध्ययन पसंद आएगा। आइए हम निर्गमन की पुस्तक उसके 32 अध्याय और उसके 26 और 27 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मित्रों, यह न्याय गंभीर और अंतिम है। ऐसा होना आवश्यक था क्योंकि यह भयंकर पाप था। हमारी कलीसियाओं में भी उदारवाद घुसता जा रहा है और हम लोगों ने उसे बिना रुकावट के ठहरने दिया है। मुझे एक पादरी साहब ने बताया कि जब एक कोर्ट के समक्ष सेवकाई के लिए प्रस्तुत हुआ तो एक और व्यक्ति किसी उदारवादी सेमिनारी से वहां पर उपस्थित था, और मैंने इसके पहले इतना कम ज्ञान का कोई दूसरा युवक नहीं देखा जिसे बाइबल व थियोलॉजी का इतना कम ज्ञान था। स्पष्ट था कि उसका ज्ञान सीमित और विश्वास नहीं करने के बराबर था। एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह डाला कि यदि तुम विश्वास नहीं करते हो तो कम से कम यह तो जानना चाहिए कि किस बात पर विश्वास नहीं करते हो। तब इस युवक के पिता के जानने वाले ने कहा, इसका बाप पहले अच्छा प्रचारक होता था, वे विश्वास में स्थिर थे और किसी दिन यह युवक भी ठीक हो जाएगा। बाद में काउंसिल से उसे स्वीकार किया गया, परंतु मुझे दुख था कि सेवकाई में ऐसा जवान जा रहा था जो कुछ भी विश्वास नहीं करता है। परंतु जिस प्रकार इस काउंसिल ने निर्णय लिया, मूसा का फैसला कदापि ऐसा नहीं रहेगा। उसने तुरंत तलवार नहीं खींची और युवक को घात नहीं किया, परंतु वह उसे प्रचारक की हैसियत से नहीं स्वीकारेगा। उसने हाथ में एक बाइबल लेकर उसे किसी बाइबल स्कूल में नहीं भेजा होगा और तब आकर यह सिद्ध करना कि वह सेवकाई में उपयुक्त है या नहीं। इसी कारण से और काउंसिल के निर्णयों से कलीसियाओं में उदारवादी सिद्धांत घुस पड़े हैं। आप पाप के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं, किसी ने कहा, समझौता अनैतिक है और विशेषकर कलीसिया में। मूसा ने समझौता के क्षेत्र में बहुत प्रशंसनीय कार्य नहीं किया। उसने जोरदार शल्य चिकित्सा की, जो दोषी पाए गए उन्हें घात किया, जिससे सारा शिविर साफ हुआ। कई लोगों ने कहा यह दुष्टता का कार्य था। क्या कैंसर को काट कर निकाल देना और राष्ट्र को बचाना ठीक है, या कैंसर को बढ़कर नष्ट करने से राष्ट्र का विनाश होने देना ठीक होगा? उन लोगों के विषय में सोचें जो शिविर के अंदर रहकर भी दोषी नहीं थे। यदि मूर्ति पूजक लोगों को इसराइल में रहने दिया होता तो वे शायद प्रतिज्ञा के देश में कभी भी नहीं पहुंचते। मित्रों, यही आजकल कई कलीसियाओं में भी ऐसा ही होता है। मैं देखता हूं कि एक के बाद एक कलीसियाएं अपना प्रभाव खोते जा रहे हैं क्योंकि उदारवादी उसमें प्रवेश पाते हैं। हम बहुत नम्र, संवेदनशील और कभी कभी बुराई से निपटने में मूर्खता भी करते हैं। हम आगे देखते हैं मूसा का परहित निवेदन। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय उसके 30 पद में लिखा हुआ है। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। मित्रों, प्रायश्चित का मतलब पापों का ढकना है। प्रभु यीशु के पृथ्वी पर आने से पूर्व और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पूर्व उपयुक्त ढंग से प्रायश्चित पापों का दूर करना होता था। अब मूसा इसराइली लोगों को प्रतिज्ञा के देश में ले जाने का चौथा कारण प्रस्तुत करते हैं, और तब हम आगे निर्गमन 32 के 31 पद में पढ़ते हैं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। वह क्या है? पाप अंगीकार। यदि आप ईश्वर के समक्ष या ईश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो पाप के मामले में उससे सहमति करनी होगी। पाप पाप है और उसको मानना होगा। इसका कोई फर्क नहीं कि आप कौन है। ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो इसराइली लोग हैं। मूसा का कहना है, हमने पाप किया है। इसराइली सोने के बछड़े की मूर्तियां बनाकर घोर पाप किया। मूसा ने इसको परमेश्वर के सामने अच्छा माना, अर्थात स्वीकार किया। मित्रों, जब हम अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो उन्हें शब्दशः उच्चारण कीजिए, अर्थात मान लीजिए। हम निर्गमन 32 उसके 32 पद में पढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। लिखा है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मित्रों, मूसा ने कहा, मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, यदि तू उनके पाप क्षमा नहीं करेगा तो मैं विनती करता हूँ कि तू उनकी जगह पर उस पुस्तक से मेरा नाम काट दे। मित्रों, स्मरण रखें कि ईश्वर ने मूसा से कहा कि जो वाचा उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब को एक राष्ट्र बनाने को कहा है, अर्थात दिया है, अब मूसा के द्वारा पूरा करेगा। परंतु मूसा ने कहा कि वह अपने लोगों के साथ रहेगा, अर्थात अपने लोगों को रखेगा। यदि वह उन्हें उस देश में नहीं ले जाएगा तो उनके साथ ही नष्ट भी हो जाएगा। ध्यान दें कि जो ईश्वर के हृदय को छूता है वह उसके हाथ को भी चलाता है। हम निर्गमन 32 उसके 33 पद में पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। मित्रों, परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से और निजी तौर पर पाप से निपटते हैं। तब हम 32 अध्याय के 34 और 35 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। 35 पद में, और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। मित्रों, परमेश्वर पाप से निजी तौर पर निपटते हैं। यद्यपि वह लोगों को अवश्य ही उस देश में ले जाएंगे, वे जिन्होंने सोने के बछड़े की मूर्ति पूजा नहीं की उन्हें ईश्वर का दूत आगे आगे ले जाएगा। अब पुराने नियम में प्रभु का दूत यीशु को दर्शाता है, अर्थात यीशु ख्रीस्ट के दर्शनीय उपस्थिति को प्रकट करता है, मसीह की अवतार की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि मूसा की परहित निवेदन के कारण ही परमेश्वर ने उसके लोगों को नहीं त्यागा। मित्रों, इसके साथ ही इस अध्याय के द्वारा प्रार्थना के महत्व को समझना चाहिए। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को 33 अध्याय से जारी रखेंगे, और इस अध्याय में हम इन विषयों पर विचार करेंगे। शिविर से परमेश्वर की उपस्थिति गायब होती है, इसराइली लोग बुड़बुड़ाते हैं, प्रभु मूसा से बात करते और मूसा परमेश्वर की महिमा देखने के इच्छुक हैं। आइए हम देखें, इसराइल की यात्रा जारी है। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। परमेश्वर इसराइल को देश में प्रवेश कराने का प्रयास कर रहे हैं। गिनती नामक पुस्तक में ही उनकी निर्जन प्रदेश की यात्रा पुनः आरंभ होगी। लय व्यवस्था की पुस्तक में लगातार तंबू संबंधी उन्हीं बातों का विवरण है जिनके निर्देश एवं उपासना नियमों की चर्चा निर्गमन में की गई है। मित्रों, हम निर्गमन 33 उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। मित्रों, वे सभी आभूषण जिनके विषय चर्चा हो चुकी है सब अन्य जातियों के थे। उदाहरण के स्वरूप कान के फुंदे एक तथ्य को उजागर करते थे, वे अब तक मिस्री देव देवताओं के उपासक हैं। कान के झुमके भी इसी को दर्शाते हैं। इसमें और क्रूस के पहनने में एक समानता दिख पड़ती है। जब इसके पहनने से लोगों को मसीह होने का आभास मिलता है, पर हाँ, आजकल इसका कोई भी महत्व नहीं है। हम निर्गमन 33 उसके 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो, जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। मित्रों, यह तीसरी बार है कि परमेश्वर इसराइल को हठीले अथवा ऐठी गर्दन वाले लोगों की संज्ञा देते हैं। प्रभु उन पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वह उनको इसलिए छुटकारा नहीं देना चाहता है कि वे अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक अच्छे और भले हैं। परमेश्वर ने उनसे उन चिन्हों को दूर करने को कहा जिसके कारण वे विधर्मी अन्य जाति समझे जाते थे, और परमेश्वर के प्रति उनकी विश्वस्तता साबित करें। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि शायद इसी कारण प्राचीन कलीसिया में पानी का बपतिस्मा महत्वपूर्ण माना जाता था। इससे प्रकट होता है कि कोई व्यक्ति पुरानेपन को छोड़कर एक नए मार्ग को अपना रहा है। आजकल भी इसी प्रकार की साक्षी प्रकट की जाती है, अर्थात ऐसा ही देना चाहिए। हम निर्गमन 33 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, तब इसराइली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। इसके बाद हम देखते हैं तंबू अर्थात निवास स्थान का छावनी से दूर रखना। निर्गमन 33 उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। मित्रों, तंबू तैयार हो गया। मूसा ने इसकी स्थापना छावनी से दूर की। यह तंबू मिलन का स्थान था, संभवतः यह साधारण तंबू के समान था जो बाद में मिलाप वाले तंबू की चार दीवारी बन गया। तब हम आगे पढ़ते हैं 33 उसके 8 और 9 पद में, जहां पर लिखा है, और जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे, और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। मित्रों, प्रश्न उठता है कि क्या परमेश्वर को किसी ने कभी देखा? योना रचित सुसमाचार 1:18 पद में लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इसके बाद योना 14:9 में लिखा है कि जिसने प्रभु यीशु को देखा उसने पिता को भी देखा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकाशन है जो मानवीय देह में स्वयं को छिपाए थे। पुराने नियम में उनको प्रभु का दूत का नाम दिया गया है। मूसा के साथ भी परमेश्वर का दूत बातें करता था। मित्रों, हम निर्गमन 33 उसके 11 पद के पहले हिस्से को हम पढ़ते हैं, लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। जैसे मित्र आमने सामने होकर बातें करते हैं, मूसा भी परमेश्वर से इसी प्रकार बातचीत करता था, परंतु मूसा ने परमेश्वर के मुख को कभी नहीं देखा। तब हम निर्गमन 33 उसके आगे के हिस्से को पढ़ते हैं, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम का एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था वह तंबू में से न निकलता था। मित्रों, पुनः यहोशू की चर्चा हुई है। परमेश्वर उसे मूसा का स्थान लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस समय इस बात पर किसी को भी शक था, परंतु यहोशू की पुस्तक पढ़ने से प्रतीत होता है कि संभवतः मूसा का उत्तराधिकारी बनने के लिए वह सबसे कम पसंद व्यक्ति था। तब हम आगे देखते हैं मूसा की प्रार्थना और प्रभु का उत्तर। निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय के 12:13 पद में लिखा है, और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। मूसा वही वस्तु मांग रहे थे जिसकी चर्चा पौलुस ने फिलिपियों की पत्री 3:10 में की है, ताकि मैं उसको जानूं। ठीक यही मतलब फिलिपुस का भी था जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:8 में कहा गया, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। मित्रों, मेरा विश्वास है कि प्रभु के ईमानदार विश्वस्त बालक के मन की कामना यही होनी चाहिए कि प्रभु परमेश्वर को अधिक जान सकें। हम निर्गमन 33 उसके 14-15 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। मित्रों, मूसा को एहसास था कि परमेश्वर की उपस्थिति का साथ होना अवश्य है। उसे यह भी पता था कि उसकी सामर्थ्य से यह संभव नहीं हो सकता है। हम निर्गमन 33 उसके 16 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने इसराइली लोगों को एक विशेष कारण से एक विशेष लोग बनाया था। आजकल कलीसिया को भी विशेष लोग बनना चाहिए। इसका अर्थ परमेश्वर के लिए निराले लोगों से है, न कि बेढंगे लोगों से। मित्रों, हम निर्गमन 33 उसके 17 पद में पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा परमेश्वर से निकटतम होता जाता है। तब हम निर्गमन 33 उसके 18 में आगे पढ़ते हैं, उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा परमेश्वर का मुख वास्तव में देखने में असमर्थ ठहरा है। हम निर्गमन 33 उसके 19 पद में आगे पढ़ते हैं, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। मित्रों, पौलुस रोमियों के पत्र 9 उसके 15 पद में इसी बात को कहते हैं, उसने मूसा से कहा, मैं जिस पर दया करना चाहूंगा उसी पर दया करूंगा, और जिस पर तरस खाना चाहूंगा उसी पर तरस खाऊंगा। तब हम निर्गमन 33 उसके 20 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मित्रों, यह एक तथ्य है कि हम परमेश्वर का मुख नहीं देख सकते हैं। यदि हम देखते भी हैं तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तब हम निर्गमन 33 उसके 21 से लेकर के 23 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का दर्शन तो करने पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं करने पाएगा। मित्रों, इस अवतरण से विदित है कि परमेश्वर का प्रतिनिधित्व उसकी महिमा के प्रकाश से होता है। प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के समय स्वर्ग में अनेक चिन्ह दिखाई पड़ेंगे, जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसके 30 पद में पाते हैं। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मित्रों, मेरे विचार से वह चिन्ह सेकीना महिमा है, जिसकी चर्चा निर्गमन की पुस्तक 33 उसके 21 से लेकर के 23 पद में हमें मिलता है। जब मसीह ने देह धारण किया तब यह महिमा वहां नहीं थी, उसने दीन स्थान ग्रहण कर लिया, अपनी महिमा एक ओर रख दी, परंतु तो भी वह परमेश्वर था, इसलिए वह कह सका कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मित्रों, हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे, पर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को देखेंगे और मनुष्य रूप में देखेंगे, क्योंकि यह वह रूप है जिसे उसने धरती पर धारण किया। अभी वह महिमामय देह में है और एक दिन हम भी उसे देखेंगे। पहला योहना के पत्र 3 उसके 2 पद में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मित्रों, यह विश्वासियों की आशा है जो विश्वास द्वारा ही चल रहे हैं, और यही विश्वास का मार्ग भी है जिस पर मूसा चलने जा रहा है। उसे पता था कि परमेश्वर की उपस्थिति संग होना चाहिए, वरन परिणाम स्वरूप असफलता ही हाथ लगेगी। मित्रों, आजकल हमें भी प्रतिदिन के जीवन में अनेक समस्याओं से निपटने के लिए उसकी अटूट संगति की आवश्यकता है। आज कई बार हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अलग कर देते हैं, अर्थात उसको अपने संग नहीं रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि यदि वो हमारे संग में है तो हमें परेशानी होगी, अर्थात हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे जिसे हम करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहते हैं कि आप भी पवित्र बने। यदि आप उसे अपने संग रखेंगे तो निश्चय आप अपने कार्यों में सफलता को प्राप्त करेंगे। आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही आपको इस अध्ययन से लाभ प्राप्त हुआ है, और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में आप प्रभु के संगति में बने रहेंगे और अपना जीवन उसे सौंपेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
सच्चा